how to protect ourselves from these shayateen.
Quran aur sunnat uske sath maujood hai, usko darna nahi chahiye. Asal mein insaan jab darta hai na to shaitan haavi hote hain. To ek but tha, usko unhone toda, to uske ard gird log ibadat karte the. Wo ek baqaida uska mandir bana hua tha. To us but ke andar se ek chudail nikli thi.
Sabse zyada jo inhe power milti hai wo shirk se milti hai.
Shaitan dakhil hota hai aur wo aapke andar aise daudta hai jaise khoon daudta hai.
To ye bilkul sahi waqia hai ki ye sood se contact mein hote the jinn ke sath, shayateen ke sath.
Uski gandagi ki wajah se unko yakeen ho gaya ki shayateen iske sath tha. Ek baat to confirm hai ki janwar ki shakal ke andar jinn aata hi aata.
Usne jab खुद एक्नॉलेज किया हारून रशीद के सामने कि हाँ ख्वाब में जिन्नात आके मुझे लिरिक्स लिखवाते हैं,
सही,
और जिन्नात आके मुझे ये ट्यून्स बताते हैं, क्योंकि ना उसकी ट्यून्स बहुत यूनिक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पता है कि ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स है, स्पेशली जो यूथ हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और यूट्यूब पे भी जिन स्टोरीज़, पोजेशन स्टोरीज़ और हॉन्टेड हाउसेज़ की स्टोरीज़, आपको पता है कि ये चीज़ इंसान को बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, देखिए मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि हम दोनों जिन एक्सपर्ट नहीं हैं, यानी हम कोई राकिज़ नहीं हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद बेसिकली ये है कि वी जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ जिन्स एंड हाउ थ्रू आउट हिस्ट्री दे हैव इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमैनिटी और शैतान के हवाले से, और फिर ये कि डिफरेंट कल्चर्स में डीमंस का क्या कॉन्सेप्ट है। और मेन मकसद है टू मेक अस अवेयर कि डिसेप्शन जब करने पे आए शैतान तो वो किस लेवल पे कर सकता है। तो ये पहला डिस्क्लेमर कि हम राकिज़ नहीं हैं, ना ही जिन एक्सपर्ट हैं। और दूसरा ये है कि हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फोकलोर्स, अरेबिक फोकलोर्स हैं जैसे, उसमें जिन्स का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। वो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि दिस इज़ हाउ थ्रू आउट हिस्ट्री लोग डीमंस की बात करते हैं। जो ऑथेंटिक है इंफॉर्मेशन वो इस्लामिक इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह, और इसीलिए मैंने आज मुगीरा को दावत दी है। सो स्टार्ट करते हैं मुगीरा। सो मुगीरा, इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जिन्स हैं?
बिल्कुल ऐसी है, पॉसिबिलिटी है, बल्कि कुछ ऐसी रिवायात मिलती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ जिन जो हैं वो छतों पर रहते हैं और जब खाना खाने की बारी आती है तो वो आके शरीक हो जाते हैं खाने में, और वो खाने के वक्त में घर में उतरते भी हैं और ऊपर भी चलते हैं। तो आम तौर पे लेकिन जिन्नात जो हैं वो वीरान जगहों पे रहते हैं और खंडरात में रहते हैं, पाकी नापाक जगहों पे और गंदगी वाली जगहों पे, लेकिन इंसानों के साथ भी रहते हैं, घरों के अंदर भी रहते हैं, और इसके बहुत सी दलाइल और अहदीस भी मौजूद हैं इस बारे में।
बिल्कुल, देखें मेनली तो जो तीन टाइप्स हैं वो तो सही हदीस से साबित हैं कि एक जो आसमान पे उड़ रहे होते हैं, एक है जो दुनिया में बाउंड है, वो एक जगह रहते हैं, कूच कर जाते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, या लोगों के घरों में, या कह लें कि हॉन्टेड जो प्लेसेस जिन्हें हम कहते हैं। फिर तीसरी एक टाइप है शेप शिफ्टर, जो स्नेक की शक्ल और डॉग की शक्ल, ये सबसे कॉमन आई है, लेकिन जानवरों की मज़ीद शक्लें भी वो मेरा ख्याल कर सकते हैं। तो ये तो तीन मेन टाइप्स हैं, इसके अलावा भी कोई टाइप्स जो है वो आपके नॉलेज में?
यार बस मोटी मोटी असल में इस तरह की टाइप्स हैं कि एक असल में मुख्तलिफ ज़िक्र आते हैं। मिसाल के तौर पे एक ज़िक्र आता है कि कुछ ऐसे हैं जो कि मिसाल के तौर पे इंसानों की तरह बाउंड हैं, ठीक है, और इसी तरीके से इनके जानवरों का भी ज़िक्र आता है कि, और कुछ ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि वो सिर्फ यानी जानवरों की तरह ही रहते हैं, वो अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकते।
अच्छा।
तो मुख्तलिफ इसके बारे में तफसीलात मुख्तलिफ उलमा ने ज़िक्र की हुई हैं, लेकिन मोटी मोटी जो आपने तकसीम बताई है, जो आपने वाइफिकेशन की है, वो यही है कि एक जो है जो आसमानों पर उड़ते हैं, दूसरे जो हैं जो सफ़र करते हैं, और तीसरे वो जो हैं जो जानवरों की शक्ल में रहते हैं। तो मोटी मोटी ये, बाकी जनरली ये एक अलग डिस्कशन इस बारे में मौजूद है स्कॉलर्स की कि क्या जिन्नात जो हैं अपनी शक्ल खुद बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते।
अच्छा,
इस बारे में डिटेल्स मौजूद हैं। कुछ काफ़ी मेजॉरिटी स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो अपनी शक्ल खुद नहीं बदल सकते, लेकिन उनके पास अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा कलाम उनको सिखाया है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी शक्ल बदल सकते हैं।
अच्छा।
तो लेकिन जनरली यानी अमूमी तौर पर ये बात दुरुस्त है कि जिन्नात अपनी शक्ल बदल सकते हैं, तो वो किसी भी जानवर की सूरत में,
सही,
खासतौर पर इब्लीस का हमें कुरान मजीद में जिक्र आता है, सुराका जो था, सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया जंगे बदर के मौके पर, इसी तरीके से मुख्तलिफ शक्लों में वो आता रहा, शैतान आता रहता है, तो कर सकते हैं। लेकिन अगेन प्रॉब्लम है इसके बहुत सी चीज़ें चूँकि इल्मुल गैब से मुतालिक हैं, तो उलमा की तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन बाकी इस पर कोई हतमी बात करना ज़रा मुश्किल होती है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, सिचुएशन क्या।
अच्छा, मैं आपके सामने ये अरेबिक फोकलोर से, ज़रूरी नहीं है कुरान और हदीस से प्रूवन है, कुछ टाइप्स हाँ कुरान में भी आई हैं, जैसे जो है वो करीन, اس کا ذکر آیا جو کہ کمپینین ہے, جن کمپینین ہے, افریت کا ذکر آیا, مارد اس کا حدیث میں ذکر ہے غالباً, اسی طرح خنزب ہے,
خنزب
جو وسوسے ڈالنے والا ہے اس کا ذکر آیا. تو یہ جو عربک فوک لور ہے اس میں ہن کا ذکر ہے. ہن جو ہے بیسیکلی یہ شیپ شفٹر جن ہے جو اینیملس کی شکل دھار لیتا ہے اکارڈنگ ٹو عربک فوک لور. میں اس کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں, زکریا بن محمد القزوانی کی کتاب ہے ان دا بک آف جن, دا بک آف جن جو کہ 1283 میں پبلش ہوئی تھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خود ہن کو دیکھا ہے سعودی عرب میں, پرشیا میں اور انڈیا میں. بہرحال یہ ان کا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے. دوسری جو ٹائپ ہے الغول ہے. غول زیادہ تر قبرستان میں پایا جاتا ہے,
ڈیمنز کو کہتے ہیں,
ڈیمنز بالکل. تو پرشین میتھولوجی میں غول کا کافی
بہت زیادہ ذکر ہے,
ذکر ہے, بہت زیادہ ذکر ہے. اور غول جو ہے اس کی لیگز ڈونکی کی طرح ہیں, ہارنز جو ہیں وہ گوٹ کی طرح ہیں. تو حدیث میں بھی بلکہ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں کہ دیر از نو انفیکشن نو سرپنٹ ان اے ہنگری بیلی اینڈ نو غول. اب یہ غول وہ جن والا ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ کوئی بیماری ہے, کچھ اور ہے, خیر, لیکن مینشن ہوا ہوا ہے کہ حدیث میں اس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے. پھر جی
اس میں ایک اور بھی یہ ہے, جیسے کہ کچھ ہمارے اسلاف میں سے کسی کی رائے ہے کہ ایک جو ہے ایک جن ایسا ہے جس کی شکل جو ہے نا وہ آدھے انسان کی ہے اور آدھے کسی اور چیز کی ہے, اور وہ ایسے اوپن ویرانوں میں ہوتا ہے, یعنی آدھا وہ جانور اور آدھا انسان ہے,
بڑے بڑے دانت ہیں اس کے.
تو اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, مسافر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو بعض اوقات مار بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی بھی رائے کچھ, اور باقاعدہ ایک جو ہیں ہمارے اسلاف میں سے ایک بڑے امام کی بات ہے, مجھے نام ذہن سے نکل گیا, وہ کہتے تھے کہ میں نے باقاعدہ اس کو خود دیکھا بھی ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینسز میں کافی زیادہ.
میں تو میں نے سنا ہے کہ ایک دو اسلاف کا ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ, اور ڈیزرٹ میں بھی ظاہر ہے سفر کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے کریچر. پھر تیسرا جان ہے. جان جو ہے یہ بھی شیپ شفٹر ہے جو ڈیزرٹس میں زیادہ تر رہتا ہے, اور اٹ کین اپیئر ان دی فارم آف دا ورلڈ وینڈ اور وائٹ کیملز, واللہ عالم. یہ لیکن فوک لور میں, عربک فوک لور میں ہے. مارد ہے, مارد جو ہے یہ بہت ہی ہیوج ریبیلیس اور پاورفل ڈیول ہے, اور اس کا ذکر غالباً جو رمضان میں قید ہوتے ہیں وہاں پہ ذکر ہے, اگر مجھے شاید بھول رہا ہے تھوڑا سا, اگر آپ ریمائنڈ کریں,
وہ ہے
مارد جو ہے ان کو قید کیا جاتا ہے,
مردت الجن اس کو کہا جاتا ہے, سرکش
سرکش جو شیاطین.
ہاں تو حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے, بالکل
ایسے ذکر آتا ہے. افرید کا تو دیکھیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, سورہ نمل میں,
سب سے طاقتور جنوں میں سے یہ شام,
بالکل. بلکہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افرید آف دا جن کیم ٹو می یسٹرڈے سڈنلی سو ایز ٹو اسپوائل مائی پریئر بٹ اللہ انیبلڈ می ٹو اوور پاور ہم. وہ بھی افرید آیا تھا. تو یہ بہت ہی پاورفل قبیلہ ہے جنات کا, اور ظاہر ہے کہ اگر یہ ریبیلیس ہو جائیں, وکڈ ہو جائیں, تو پھر یہ بہت ہی پاورفل ڈیمنز بنتے ہیں. افریت شق ہے. شق از اے ویکر کائنڈ آف جن دیٹ لکس لائک اے مونسٹر ہاف فارمڈ کریچر. تو اس کا عربک فوک لور میں ذکر آتا ہے. نسناس ہے, یہ بھی ایک ویک ٹائپ آف جن ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ آف اسپرنگ ہے شق کا اور ہیومن بینگ سے, یعنی ایک ہائبریڈ ہے. یہ جو ہائبریڈ کیٹیگری ہے نا, یہ ابھی میں آپ کو مزید آگے جا کے ڈسکس کروں گا. یہ مختلف کلچرز میں ماڈرن, اگر ایون ایتھیزم کی بات کریں تو وہ بھی ایلینز کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ہائبریڈ فارم آف ایلین کی بات کرتے ہیں, جو ہاف ہیومن ہے اور ہاف کوئی اور کریچر, اور بہت ہی ایڈوانس کریچر ہے. بلکہ آپ کو بتانا کہ کچھ ایتھیس تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ مے بی جینیٹکلی ماڈیفائی کر کے ہیومن بینگس کو بنایا گیا, ایک لیبارٹری میں بنایا گیا ہے. اس طرح کی آپ کو تھیوریز فضول قسم کی جو ہے وہ ملیں گی. تو یہ نسناس جو کہ ایک ہائبریڈ فارم ہے. پھر پالیس ہے. پالیس جو ہے ڈیزرٹ میں رہتا ہے, اور اٹ از نون ایز اے فٹ لکر دیٹ اٹیکس دا سلیپنگ پیپل اینڈ ڈرینز دا بلڈ فرام دیئر باڈیز بائی لکنگ دا سولز آف دیئر فیٹ, واللہ عالم. یہ ایک ٹائپ ہے. پھر سیلات ہے. اٹ از دی اسمارٹیسٹ شیپ شفٹر کریچر دیٹ کین میمک ہیومن اپیئرنس ویری ایزیلی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہیومن اپیئرنس کو بہت ایزیلی میمک کر لیتا ہے. اور لاسٹلی الشیطان, وہ تو ڈیفینیٹلی قرآن مجید میں ریبیلیس ڈیولز کو کہا گیا ہے, اور شیطان سب سے بڑا ابلیس. کیپنگ دیز ٹائپس ان مائنڈ, آئی تھنک پاسبل تو ہے جو یہ ٹائپس بتائی جا رہی ہیں, کیونکہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے جو شیپ شفٹر ہیں یا جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس پاورز تو بہت ہیں. اور شیپ شفٹنگ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں, لوگوں نے, آپ نے بھی اپنے بڑوں سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ عجیب و غریب شکل, جیسے پچھل پیری کا ایک وہ काफ़ी जिक्र आता है हमारे कल्चर में। फिर इसी तरह जो है ना जी, वो छलावा, एक छोटा सा बच्चा और वो बहुत तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से खाता है, इस तरह की चीज़ें आप सुनने मिलेंगी आपको।
और ये एक्सपीरियंसेस हैं बहुत ज़्यादा, तवातुर के साथ एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं
बिल्कुल,
यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिपोर्ट्स हैं। और ये सिर्फ अजीब इंटरेस्टिंग बात ही है कि जो इस तरह के आप बता रहे हैं ना, जैसे बच्चे की शक्ल में आना और इस तरीके से, ख़ास तौर पर ये सिर्फ हमारे दौर की कहानियाँ नहीं है। मतलब अगर आप हमारे असलाफ की किताबों में पढ़े और तारीख की किताबों में ख़ास तौर पर पढ़े तो उन किताबों के अंदर भी इन चीज़ों का जिक्र, और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जामे और रसाइल में इन चीज़ों का बहुत जिक्र किया। जो एक इंटरेस्टिंग बात जो अरे भाई मुझे समझ आती है ना, वो सारी अगेन टाइप्स तो बहुत ज़्यादा जिक्र की जा सकती हैं, वल्लाहु आलम, जो मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की इस मौजू को और जो मैंने समझा मुख्तलिफ टाइप्स को देखते हुए, जैसे आपने भी जिक्र किए और ये वो, वल्लाहु आलम, मुझे फ़ील होता है कि शायद जिन्नात जो हैं, अगेन उनकी किस्में जो तो अहादीस में जिक्र जो आसार में मौजूद हैं वो तो हमें माननी चाहिए, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जनरली जो इतनी ज़्यादा किस्में बनाई जाती हैं वो मेरी नज़र में शायद लोगों की एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने जिन को एक ख़ास शक्ल में देखा, उन्होंने जिक्र किया कि जिन इस शक्ल में आता है। जबकि अहादीस के अंदर अगर हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे कुत्ते का जिक्र किया, जानवरों का जिक्र किया, तो एक बात तो कन्फर्म है कि जानवर की शक्ल के अंदर जिन आता ही आता है और वो मौजूद होता है। जैसे कि सांप के बारे में ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, कुत्ते के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर जिक्र किया। इसी तरीके से जो चीज़ें, यानी ये चीज़ें तो जो वाज़े हैं, रही बात जो इसी तरीके से उड़ने वाली जिक्र, ये भी सही अहादीस में और आयात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो अब अगर आप उसको एक ही जिन बनाएं या फिर एक अलग किस्म बना लें, वल्लाहु आलम, ये भी एक है। और तीसरी चीज़ ये कि जिन्नात का ज़मीन पर होना और ये चीज़ें, वो भी ऑलरेडी मौजूद है। तो शायद वन ऑफ द थिंग्स दैट आई बिलीव इज़ के अगर आप इसको सारी किस्मों को इकट्ठा करें तो जिन्नात, जिस तरह इंसानों के अंदर कुछ लोग जो हैं ताकतवर होते हैं, उनको अल्लाह ने कुछ खास सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में फंडामेंटल्स के अंदर वो शेयर करते हैं, कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर करते हैं आपस में, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर जितनी उनके अंदर ताकत होती है, इस्तेआत होती है, इस तरीके से उनकी एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे आपने इफ़रीत की जिक्र किया, इफ़रीत का कुरान मजीद में जिक्र है, अब उसकी ताकत का खास तौर पर कुरान मजीद ने बकायदा उसका एक वो भी जिक्र, अमली एक मुजाहरा भी पेश किया कि वो बाकायदा वहाँ से उसने कहा कि मैं आपके खड़े होने की जगह से पहले ले आऊँगा उसको। तो क्या हर जिन वो कर सकता है? जाहिर है लगता यही है उस आयत के कॉन्टेक्स्ट से कि नहीं, हर जिन ये नहीं कर सकता।
सही।
इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये, और भी जैसे अहादीस में जिक्र आता है कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो शैतान के ऊपर जो दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, शैतान उसमें दाखिल नहीं हो सकता। हालांकि वो एक हर चीज़ में वो इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है, तो दरवाजे के अंदर दाखिल होना इसके लिए क्या मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें लिमिटेशन हैं। तो ये मुझे समझ आती है जनरली इनकी टाइप्स के हवाले से अगर हम जिक्र करें। लेकिन बाकी जो आपने बातें जिक्र की, इसमें बहुत सी ऐसी जिक्र हैं जो हमारी इवन असलाफ से बातें मिल जाती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से मिल जाती हैं। और बल्कि एक छोटी सी चीज़ यहाँ से मैं आपको एक वाक़ा जिक्र करता हूँ। इमाम दारमी जो हैं, बड़े मशहूर इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, उनकी किताब है अतबाउस सुनन वल आथार।
अच्छा।
उसके अंदर वो एक ना अपने शेख, अपने एक उस्ताद का वाक़या नकल करते हैं। वो कहते हैं कि जिन जो है वो हमारी एक लड़की पर आशिक हो गया। तो वो ये कि उसने क्या किया कि उसने बकायदा ना पैगाम निकाह भेजा।
अच्छा।
तो हमने कहा जी ये पैगाम निकाह किस चीज़ का? तो उसने कहा कि देखिए मैं गुनाह नहीं करना चाहता उसके साथ बुराई करके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हलाल तरीके से करूँ। बल्कि अलग बहस है कि जिन्नों की शादी हो सकती कि नहीं, ये अब इससे कई उलमा दलील लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने उससे कहा ठीक है, हमने उसमें से निकाह कर दिया उसका। हमने कहा ठीक है, अगर तुम हलाल तरीके से करना चाहते हो तो कर लो, निकाह करवा दिया। जब उसका निकाह करवाया तो कहते हैं कि वो जो था ना, उससे फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई।
ये कैसे बात करता था? किसी फॉर्म में आके?
नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि हमें बस आवाज़ आती थी। कहते हैं हमने फिर इससे पूछा, उसने पूछा कि तुम कैसी मखलूक हो, तुम क्या चीज़ हो, यानी तुम्हारी हकीकत क्या? तो उन्होंने कहा कि हम तुम जैसी मखलूक हैं।
अच्छा,
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी इन अदर वर्ड्स, असल में ये बहस मौजूद है, सवाल पैदा होता है कि जब क्या जिन वो आग है?
सही।
क्या वो एक धुआं है? असल में कुरान मजीद में जो आया स्मोकलेस फायर, तो कुरान मजीद में तो इसका जिक्र है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, वो स्मोकलेस फायर नहीं, और इसके सही दलील यही है कि वो फायर नहीं है, यानी उसकी हकीकत आग की तरह है। जैसे हमारी है ना, अभी अगर हम देखें कि हम अब मिट्टी तो नहीं है, हम तो फ्लैश हैं, लेकिन हमारी हकीकत असल में जो है ना मिट्टी है। तो उलमा कहते हैं, मुहक्किकीन उलमा कहते हैं कि जैसे अब उसकी कंडीशन, उसकी जो है ना फिज़िकल फॉर्म चेंज हो गई है। इसीलिए हदीस में जैसे आपने जिक्र की कि इफ़रीत के बारे में, एक और हदीस इससे मिलती जुलती आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मेरे पास आया, मैं नमाज पढ़ रहा था, तो वो यानी आग का अंगारा हाथ में लेके आया, यानी एक शोला लेके आया, एक फ्लेम लेके आया साथ। तो सवाल ये है कि अगर वो खुद फ्लेम है तो उसको फ्लेम लाने की क्या ज़रूरत है?
बिल्कुल सही,
वो फ्लेम नहीं है इसका मतलब, लेकिन वो फ्लेम को उस तरह यूज़ करता है जिस तरीके से इंसान भी शायद यूज़ कर सकता है, और उसने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को जलाने की कोशिश की। आपने आउज़ु बिल्लाह पहले पढ़ा तीन दफ़ा, सही हदीस में, सही गालिबन सही मुस्लिम की हदीस है, आपने तीन दफ़ा आउज़ु बिल्लाह पढ़ा, फिर उसके बाद आपने अल्लाह की लानत उस पर की, और उसके बाद आपने हाथ आगे किया उसको पकड़ने की कोशिश की, और फिर साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने ये क्यों किया, तो आपने फरमाया कि मैं उस शैतान ने मुझे तंग किया था, तो मैंने सोचा मैं उसको अगर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात करना होता इज्जत का, कि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह सिर्फ मुझे इख्तियार दे कि मैं जिन्नात के ऊपर अपनी हुकूमत कर सकूं, तो मैं उसको जरूर पकड़ के बांध देता और तुम उसको देख सकते।
सही,
तो इससे पता चला कि अच्छा एक तो ये बात थी कि वो उसने कहा मैं तुम जैसी मखलूक हैं, यानी उनकी हैत वो अब आग नहीं है। उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरह के, हमारा कबीला भी तुम्हारी तरह का है, और उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा तुम्हारे यहाँ मजहबी इख्तलाफात भी वैसे ही हैं? उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ बिल्कुल हैं, हमारे यहाँ कदरिया शिया और मुख्तलिफ जो है मुर्जिया वगैरह इस तरह के हमारे हैं। फिर उसके बाद आगे सुने, उन्होंने कहा कि एक और रिवायत के अंदर आमश, इमाम आमश बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने रिवायत की, उन्होंने कहा कि ऐसे ही हमारे एक जिन ने किसी लड़की से शादी की, हमारी किसी लड़की से शादी की, यानी जिन ने हमारी लड़की से शादी की, तो उसको हमने खाने पे बुलाया, तो हमने पूछा तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, उसने कहा मुझे चावल पसंद है। और उसने कहा कि वो चावल हमने देखा कि हम दावत पे बैठे हुए थे, तो हम खाना खा रहे थे, तो शादी की वो वलीमा था उस जिन का, तो कहते हैं कि हमने देखा उसकी अपनी पूरी फैमिली आई हुई थी साथ।
सही रवायत है,
ये कई रिवायात इस तरह, और यानी सनद के एतबार से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं, यानी ये अपने उनके अकवाल है।
अच्छा,
तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि वो जनाब, हमने देखा कि वो चावल उठ रहे हैं हवा के अंदर और वो गायब हो जाते हैं अचानक,
सही
प्लेट के अंदर चावल अचानक उठ,
ऐसा हमारे आम लोगों ने भी कई बार देखी है।
तो अच्छा, इस तरह के वाकयात जिक्र करने का मतलब ये है, मकसद असल में ये है कि यानी एक चीज़ बात यह है कि इसको आजकल के दौर में डिनाई करना गलत है, असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मौजूदा साइंटिफिक दौर के अंदर, एक बहुत बड़ा, बल्कि क्लासिकल दौर में भी मुतज़िला और मुर्जिया वगैरह इमाम तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो इसका इनकार करते थे। तो वी नीड टू नो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इनकी रियलिटी, हाँ इनकी डिटेल और कुछ फंडामेंटल्स पर हमारा इत्तेफाक भी है। जैसे आपने कुछ चीज़ें जिक्र की ना, वो उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं, जो अहादीस और कुरान और सुन्नत से मरवी हैं, लेकिन हाँ कुछ डिटेल्स बातें कि हाँ अब वो जो आपने बताया कि वो शेप शिफ्टर, यानी फॉर एग्जांपल शेप शिफ्टिंग का भी जिक्र हमें मिल जाता है, जो आपने कहा कि वो आधा इंसान है आधी कुछ और चीज़ है, अब वो एक्चुअल में क्या वाकई वो उस चीज़ उस शेप के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्या परमानेंट उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि नहीं वो डिफरेंट है, वल्लाहु आलम। तो इसमें हम तफसीलात हम कह सकते हैं कि वल्लाहु आलम, ये एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, और वो एक्सपीरियंसेस कोई आम एक बंदे के नहीं है, मल्टीपल लोगों के,
हिस्टोरिकली चला है बिल्कुल।
तो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है इन चीज़ों की।
अच्छा, कुरान में अगर हम देखें कुरानी जो आयात हैं, तो उससे साफ वाजे है कि जिन्नात, जो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बुरे जिन्नात का जिक्र कर रहा हूँ, जो शयातीन हैं, दे मेक पीपल वर्शिप देम।
ऐसे ही
एक तो इब्लीस खुद चाहता है उसकी इबादत हो, फिर ये कि मैंने तो यहाँ तक वीडियोस देखी हैं कि रुकिया केस, एक जो राकी हैं वो एक जिन से बात कर रहे हैं, जिन औरत पे आया हुआ है, और वो इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरी ड्यूटी फलाने मंदिर पे या फलानी जगह पे लगी हुई है, मैं फलाने बुत के अंदर होता हूँ, लोग आते हैं दूध देते हैं, दूध मैं ही पीता हूँ, ठीक है, इस तरह की हैं वीडियोस।
बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, एक हमें रिवायत मिलती है, तारीखी रिवायत है, गालिबन इमाम कसीर रहमतुल्लाह ने जिक्र की, मुझे रेफरेंस उसका याद नहीं है, उसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को एक भेजा था, खालिद बिन वलीद को एक जगह इलाके पे भेजा, तो वहाँ पे एक शैताना थी, शैताना का लफ्ज़ आता है बकायदा, तो एक बुत था, उसको उन्होंने तोड़ा, तो उसके अंदर लोग इबादत करते थे, वो एक बकायदा उसका मंदिर बना हुआ था, तो उस बुत के अंदर से एक चुड़ैल निकली थी, उसका लफ्ज़ शैतान, असल में उसकी हकीकत नहीं पता, क्या वो औरत थी, एक फ़ीमेल थी जो कि जिसके बाल बहुत बड़े हो चुके थे और वो बुरी हालत थी, तो या फिर वो कोई वाकई कोई और चीज़ मखलूक थी, लेकिन वो बुत के अंदर से निकली, उन्होंने खुद को तोड़ा तो उसके अंदर से वो भागी और चीख करके एक तरफ भागना शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर जाके उसको कत्ल किया बकायदा। गालिबन सईदना अली थे या सईदना
खालिद
बिन वलीद थे, इन दोनों में से, अल्लाहु आलम। तो उससे पता चलता है कि शयातीन जो हैं ख़ासतौर पर, और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, असल में ना बहुत सी चीज़ें मंदिरों के पास और इस तरह की जगहों पे अजीबो गरीब होती हैं। देखिए लोग बेवकूफ़ लोग होते हैं, बेवकूफ़ भी, लेकिन इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होते कि वो बगैर सोचे समझे जो है ना वो चीज़ें कर लें। कुछ वाकयात वहाँ पे वाकई ऐसे होते हैं जो उनको बज़ाहिर मौजज़ात लगते हैं, और वो उस चीज़ के उससे वो रीअश्योरेंस लेते हैं कि हाँ ये सच है, और उसमें जैसे मैंने बताया, और इस तरह की बहुत सी चीज़, शयातीन बहुत लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं, बाकायदा मन्नतें भी पूरी करते हैं। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने कई वाकयात जिक्र किए, कहते हैं मेरे साथ वाकयात ऐसे हुए पीरों के साथ कि वो जनाब ये करोगे तो ये हो जाएगा, शयातीन करते थे और शयातीन खुद बताते, और पीर वो जब मुसलमान होते थे यानी, या फिर वो सब गन छोड़ के जब वो तौबा करते थे, तो फिर वो बताते थे कि हाँ जिन्नात आते थे मेरी मदद करते थे, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता था कि तुम ये करोगे मैं ये कहूँगा उनसे, तो इससे
बाकायदा लोगों का लोगों शिर्क पे ईमान मजबूत हो,
बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं ना कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो एबनॉर्मल नज़र आए, सुपर नेचुरल नज़र आए, ये उस बंदे की हक की दलील नहीं है।
सही,
ट्रुथ की दलील कुरान और सुन्नत है। तो एक बंदा आपको उड़ के भी दिखा दे, बल्कि मैं आपको मज़े की बताऊँ, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक बाबा था उनके दौर में दमिश्क में, दमास्कस में, कहते हैं वो क्या करता था, वो उड़ता था, लोग बकायदा उड़ते देखते थे उसको।
सही।
वो दमिश्क के एक पहाड़ के पीछे जाता था, वहाँ से सामान लेके आता था लोगों के सामने, कहते हमारे सामने ये कुछ होता था।
सही।
तो अल्लाह लोग इसको अपनी नज़रों से और वो सारों के सामने ऐलान करता था, कहता देखो कोई कुछ नहीं, उस दौर के अंदर ये चीज़ें होती थी। तो सुभान अल्लाह, कहते हैं ये उस बंदे की हक की दलील नहीं, बल्कि और वो खुद मानता था, और वो कहते हैं सबसे बद किरदार आदमी था वो, गंदा, और उसकी गंदगी की वजह से उनको यकीन हो गया कि शयातीन इसके साथ था।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुरान में अगर आप गौर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग एक आया है, आई थिंक सूरह अल आराफ़ की है, कि अल्लाह इबलीस को कहते हैं कि जाओ इन्हें गुमराह करो, यानी जब उसने चैलेंज किया अल्लाह को, तो अल्लाह ने भी उसको धुतकार के कहा कि दफ़ा हो जाओ और जो करना है करो। और उसमें ये है अरफाज कुरान में कि अपनी आवाज़ से और अपने घोड़ों से इनको गुमराह करो, समथिंग
लाइक बिल्कुल।
तो
साबित
हो रहा है कि एक तो उसकी आवाज़, मेरे तो ख्याल में म्यूजिक इंडस्ट्री जिस लेवल पे आज इन्फ्लुएंस कर रही, डिमोनिक गाने हैं लिटरली। दूसरा ये जो घोड़े हैं, इट मींस के जिन्नात के भी जानवर हैं।
बिल्कुल, हदीस में, सही हदीस में,
बिल्कुल,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास जिन्न आए और जिन्नों ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए खाना के लिए, खाने के लिए दुआ करें, तो अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआ की, खाने की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हड्डियाँ हैं, मुसलमानों से कहा कि ये जो हड्डियाँ हैं इनके ऊपर अल्लाह ताला जिन्नों का जो है ना खाना उगा देते हैं, बना देते हैं।
सही।
तो इसको तुम अपने, क्योंकि पुराने ज़माने में पानी कम होता था, तो लोग सफाई करते थे पत्थरों के साथ अपनी, यानी फ़ज़ाए हाजत बाथरूम में जाने के बाद, किसी जगह पर जाने के बाद, तो अल्लाह के रसूल ने कहा इनको इस्तेमाल ना करो सफाई के लिए, क्योंकि इसमें तुम्हारे भाई जिन्नों का खाना है। और साथ कहा कि उनके जो तुम्हारे जो जानवर हैं, गोबर को भी मना किया इस्तेमाल, आप बता गोबर खुश्क हो जाए,
बिल्कुल,
काउ डंक जिसे कहते हैं, तो उसको भी आग के लिए बड़ा फ़ायदा मंद होता है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसके ऊपर भी गंदगी ना, इसको भी ना साफ़ किया करो, इससे भी ना सफाई किया करो, क्योंकि इनके जो जानवर हैं वो इसमें खाना उनका अल्लाह ने इनके ऊपर उगा दिया। तो इनके जानवर भी हैं, ये इनके कबीले भी हैं, इनके बाकायदा शादियाँ भी होती हैं, बल्कि सही बात ये कुरान मजीद में इनकी ज़ुर्रियत का जिक्र है कि बाकायदा इनकी नस्लें चलती हैं, आगे इनकी औलादें होती हैं। ये बिल्कुल एक इस तरह अल्लाह की मखलूक है जिस तरीके से इंसान एक मखलूक है, कुछ चीज़ों के अंदर फ़र्क है ज़ाहिर।
और ये देखते हैं हमें वहाँ से जहाँ से हम इन्हें नहीं देख सकते, कुरान की आयत है। तो मुख्तलिफ नाम हैं इनकी दुनिया के, जैसे अंडरवर्ल्ड, कॉमनली अंडरवर्ल्ड एक नाम ग्रीक माइथोलॉजी में आप देख लें, इसी तरह पर्शियन माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड, यानी हर आपको कल्चर में अंडरवर्ल्ड का जिक्र मिलेगा। और अंडरवर्ल्ड बेसिकली इज द लैंड ऑफ द डेड पीपल, और वो ये कहते हैं कि इट इज़ बीइंग रूल्ड बाय सेटन या इट इज़ बीइंग रूल्ड बाय हेडेस, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में वगैरह वगैरह। तो इनको नज़रों से ओझल करने की हिकमत कोई बयान की है उलमा ने, आई थिंक इब्ने तैमिया का एक व्यू है इसके ऊपर कि नज़रों से ये ओझल क्यों है।
अल्लाहु आलम, मैंने इस पर, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन जनरली एक बात ये समझ आती है कि देखें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी स्टडी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को कुछ जगहों पे स्ट्रांग किया और कुछ चीज़ों में वीक कर दिया। इंसानों को कई एतबार से अल्लाह ने जिन्नों से स्ट्रांग बनाया, कई एतबार से, लेकिन कई एतबार से जिन्नात बहुत कमज़ोर है, यानी बहुत स्ट्रांग है। तो जिन्नात को कुछ अल्लाह ने कुछ चीज़ों में जो स्ट्रांग किया है, उसमें एक जो एबिलिटी दी है उसमें ये है कि एक वो देख सकते हैं, दूसरी बात है वो उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते, हम किसी जरिए से उड़ते हैं, वो डायरेक्टली खुद उड़ सकते हैं। तो इस तरह की कुछ अल्लाह ताला ने उनको एबिलिटीज़ दी हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हमें इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। अगेन ज़ाहिर है उसके पीछे हिकमत यही समझ आती है कि अल्लाह ताला की मंशा यही है कि इंसान जो है वो ज़ाहिर है शैतान को उसके लिए फितना बनाया। तो अगर शैतान को, इंसान को अपना अपना एनिमी नज़र आ जाए तो ज़ाहिर है वो उससे बच सकता है। लेकिन अक्सर औकात इसीलिए शैतान जब हमला करता है तो वो खुश, यानी विस्पर करता है, यानी उसको ऐसी जगह से हमला करता है उसके ऊपर कि जहाँ से वो उसको देख नहीं सकता। तो इससे मुराद एक यानी मेटाफोरिकल मीनिंग भी हो सकता है और उसका लिटरल मीनिंग भी हो सकता है। लिटरल मीनिंग तो है ही है, जाहिर है वो हमें पता है, लेकिन मेटाफोरिकल मीनिंग भी हो सकता है कि वो उसके हमले ऐसे होते हैं कि इंसान लीस्ट एक्सपेक्टेड जहाँ से होता है वहाँ से इस पर इंसान पर हमला होता है।
बिल्कुल।
और घात लगा,
देखिए लुकिंग एट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एंड द एज ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसमें जिन्नात कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं,
ऐसा ही है बिल्कुल।
तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल के कुछ स्ट्रक्चर जो समझ नहीं आ रहे ह्यूमन बींग्स को, जैसे लेट्स से गीजा पिरामिड, इट इज़ पॉसिबल वो जिन्नात ने बनाए। बल्कि मेरा तो मानना है कि कुछ बहुत ही मिस्टीरियस मंदिर हिंदूज के
होंगे,
जो समझ नहीं आती कैसे बने, यानी लिटरली एक माउंटेन्स को तोड़ के, एक माउंटेन को तोड़ के कार्व करके, और उस टाइम पे टूल्स कोई नहीं होते थे. तो देखें, कुरान तो बता रहा है कि वो तो गौते लगाने वाले जिन,
शयातीन कुल बन्ना इन वगवास, तो बन्ना कहते हैं बहुत ज़बरदस्त तामीर करने वाले. बल्कि अब ये सारी बात छोड़ दें कि ये जो मस्जिद अक्सा के अंदर जो जो अभी जो उसकी जो स्ट्रक्चर है, अगरचे वो स्ट्रक्चर बाद में बना मुसलमानों के दौर के अंदर, ये जो टूम्ब है इसकी जो फाउंडेशन थी, ये भी हज़रत यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात से अल्लाह ने बनाई.
अच्छा.
अब वो कौन सी कितनी बिल्डिंग थी जब ये बनी, किस हद तक वो मिसमार हो चुकी थी, जिन्नात ने क्या हद तक कंट्रीब्यूशन की थी, वल्लाहु आलम. लेकिन इनकी बुनियादें, फाउंडेशन बहरहाल उस दौर की पुरानी, खासतौर पे मस्जिद अक्सा की जो बाउंड्री है उसके अंदर जिन्नात की कंस्ट्रक्शन मौजूद थी. बाकी जैसे आपने बात की, बिल्कुल इसमें दूसरी राय मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी, मेरा भी बल्कि रुझान इसी तरफ है कि बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं खास तौर पे जो पिरामिड्स हो गए, वल्लाहु आलम, अनलेस के यानी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जिस तरीके से इंसान, हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे इंसान ने इस तरह बना लिया, तो देर आर डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़. क्योंकि देखें हमारे पास बेस मल्टीप्लिसिटी रिपोर्ट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिपोर्ट्स हैं, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इंसान जो है वो जिन्नात के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके अपने फ़ायदे उठवाते थे. तो अब जैसे हमने मिसाल दी कि वो बकायदा, जैसे मैंने आपको बताया, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने जिक्र किया कि वो पीर जो थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, तुमने ये काम करना वो करना है, और वो उसको जिन्नात उठा के लेके जा रहे हैं.
सही.
अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या फिरौन जो खुदा का यानी खुदा होने का दावा कर रहा है, और जिसको अल्लाह ने बड़ी ताकत भी दी, और वो शिर्क से बड़ा क्या शिर्क और गंदगी में के अंदर वो मौजूद है, तो आपका क्या ख्याल है कि जिन्नात उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे? बहुत ज़्यादा जिन्नात एसोसिएटेड होंगे और उससे काम करवाता होगा.
और देखें पुराने दौर में जो बादशाह थे, स्पेशली पेगन कल्चर में, सूथसेयर्स उनके इर्द गिर्द होते थे.
Exactly.
वो बिल्कुल इस तरह का रोल था जैसे आजकल आप कह लें सेक्रेटरी.
एग्जैक्टली.
वो सूथसेयर थे. और एक बड़ा मशहूर, मैं आपको
हज़रत मूसा का वाकया देख लें.
हाँ,
कितनी उन्होंने प्रेडिक्शन, कितनी जबरदस्त प्रेडिक्शन वो किया करते थे.
एग्जैक्टली. मैं आपको एक सही वाकया सुनाता हूँ हज़रत उमर सल्लल्लाहु के दौर का. हज़रत उमर सल्लल्लाहु ने एक शख्स को देखा जिसकी चाल बड़ी अजीब थी मदीना में. तो उन्हें बुलाया और उससे कहा कि ना मुझे सच सच बताओ मामला क्या है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चाल से लग रहा है कि तुम किसी गलत काम में इन्वॉल्व रहे हो. तो इन शॉर्ट ये कि वो सूद शेयर था अरब्स का मक्का में. तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु ने उसे बताया कि उसने ना इकरार कर लिया कि हाँ मैं इस्लाम लाने से पहले ये काम करता था. तो हज़रत उमर ने कहा मुझे कोई बहुत ही अजीब वाक़या बताओ. तो ही सेड कि ना मक्का में एक बार मेरे साथ, मेरे सामने जिन्नी फीमेल थी या मेल था बाहर जो भी, दैट जिन केम और वो पैनिक हुआ हुआ था और उसके मतलब बहुत ज़्यादा खौफ में था. तो मैंने उससे पूछा कि ये तुम्हें कभी मैंने इस तरह से नहीं देखा, तो इसकी वजह क्या है? तो उसने ज़िक्र किया कि वो आ गया है शख्स, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया और कुरान की तरफ इशारा किया कि अब बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है हमारे लिए. यानी जिस तरह पहले ओपनली फ्रीडम के साथ हम इन्फ्लुएंस करते थे, अब जाहिर है एक तो अल्लाह ने पहरे भी सख्त किए, तो सूरह जिन में ही आता है
कि अल्लाह ने
आसमान के पहरे सख्त किए.
और उस वक्त उन्होंने कहा कि हम सोचते थे कि ये हमारे ऊपर अचानक पहरे क्यों सख्त हो गए. वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, क्योंकि वही का आगाज होने लगा था.
सुभान अल्लाह. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिस्टम और वो कलाम लेकर आ रहे थे कि अब शयातीन का बिजनेस खत्म होने वाला था. तो ये बिल्कुल सही वाकया है कि ये सूद सेयर्स कॉन्टेक्ट में होते थे जिन्नात के साथ, शयातीन के साथ, और उनसे न्यूज़ उगलवाना.
ये ऐसी हकीकत है जिसको डिनाई नहीं किया जाता. कुरान कहता है ना.
सही.
देखें कुरान में इब्ने सय्याद का जो वाक़ सही हदीस में,
सही,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ये जो शयातीन, और कुरान भी कहता है कि अपने जो है ना कुछ खबरें डालते हैं
वही तक करते
वही
हैं,
तक ये करते भी हैं. हाँ. वो कुरान मजीद में है ना, इन शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम युजादिलून, वही का जिक्र है. बकायदा वही का मतलब यही है कि वो गैब की खबरें जो आसमान से सुनते हैं थोड़ी बहुत, अगरचे उसमें बहुत ज़्यादा झूठ मिला देते हैं, वो आके इल्का करते हैं. वो किसको इल्का करते हैं? अपने दोस्तों को. और अपने दोस्त कौन है? मुराद सूद शेयर्स हैं.
सही.
तो डेफिनेटली पुराने दौर के अंदर, बल्कि ये जो मैजिक की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो देर वॉज अ लॉट ऑफ, यानी क्योंकि ज़ाहिर है शिर्क इतना फैला हुआ था, इतनी गंदगी थी, अल्लाह माफ़ करे, अकायद और नज़रियात के अतबार से पीपल लिटरली वर्शिप जिन्स एंड डेविल्स. और उसके नतीजे के अंदर उनको कॉन्ट्रैक्ट. इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह जिक्र करते हैं कि शयातीन से अगर आपने बेनिफिट लेना होता है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम करने पड़े, बड़े गंदे और गलीज किस्म के काम, अल्लाह माफ़ करे, पेशाब से कुरान मजीद निकला, अलियाज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, यानी सोच के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. महरम रिश्तों के साथ जिना करना, ठीक है ना, बच्चों की कुर्बानियां देखना, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करना, उसके बाद शयातीन फिर आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं. तो ये सारे काम इनके लिए, मेरा ख्याल है फिरौन जैसे जो पता नहीं कितने बच्चों को उसने ज़िबा किया, उसके लिए इस तरह के काम, और ये बड़े बड़े जो थे बादशाह, तो उनके लिए बाया तक.
सही बात है. सही. मैं एक करेक्टर का जिक्र करता हूँ आपसे, ज़रियब ये बहुत मशहूर कैरेक्टर है स्पेनिश जो दौर है मुसलमानों का, जब ये हारून रशीद का दौर है और उधर से उमैयद कैलिफेट आपको पता है स्पेन में थी और बाकी तमाम जगह पे अबासिड कैलिफेट, तो ये हारून रशीद के दरबारी थे ज़ेरियब और ही वाज अ वेरी वेरी गुड सिंगर, यानी इनकी सिंगिंग मशहूर थी, पूरे जो इर्द गिर्द के इलाके थे वो भी जानते थे इसे। तो हारून रशीद ने इसको निकाल दिया था ज़ेरियब को, उसकी वजह यह है कि एक तो इसके बारे में बातें फैलाना शुरू कर दी थी इसके कोलीग्स ने कि इस पे जिन्नात आते हैं, ये दीवाना है, पागल है, वो पागलों वाली बातें भी किया करता था। उसने जब खुद एक्नॉलेज किया हारून रशीद के सामने कि हाँ ख्वाब में जिन्नात आके मुझे लिरिक्स लिखवाते हैं और जिन्नात आके मुझे ये ट्यून्स बताते हैं, क्योंकि ना उसकी ट्यून्स बहुत यूनिक होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसने इकरार किया इस बात का। तो हारून रशीद ने इसे निकाल दिया वहाँ से, लेकिन इसके बाद ये फिर स्पेन चला गया, वहाँ पे अब्दुर्रहमान थ्री ये जो कैलिफ थे बहुत मशहूर, उन्होंने इसको हायर किया और वहाँ पे इसने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई और बहुत इसका ना एक आप कह लीजिए एक वो बना, एक मशहूरी हुई वहाँ पे। तो देखें इस वाक़े से ये साबित हो रहा है कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इवन जिन्नात यहाँ तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ख्वाबों के ज़रिए या मे बी रियल में भी आके कि वो आपको कोई लिरिक्स बताएं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दें या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही यूनिक है।
अखी मैं तो बल्कि समझता हूँ कि दुनिया के जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो जिनकी पॉपुलैरिटी की कोई रीज़न, मैं पता नहीं एक मशहूर सिंगर था, ब्लैक सिंगर है, रैपर है गालिबन, ये पता नहीं आई डोंट नो एग्जैक्टली हिज नेम, मुझे भूल गया, तो मैं उसका ऐसे ही देख रहा था, उसका एक इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप आया ऐसे ही, तो उसके अंदर उससे पूछा कि आपने आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो आपको तो बहुत टाइम लगता होगा ये इसके लिए तैयारी जो आप करते हैं, ये अपने सॉन्ग्स वगैरह राइटिंग करते हैं उसकी, तो उसने कहा कि मैं नहीं करता, कहता है मुझे बस इल्का होते हैं। अब यानी अल्लाह की तरफ से इल्का कैसे हो जाते हैं? ऐसे तो नहीं इल्का हो जाते, और ख़ासतौर पर ऐसी चीज़ जो कि अल्लाह माफ़ करे यानी जो यानी गंदगी से भरी हुई है, अल्लाह और इतनी गंदी वो उसकी वो है सॉन्ग्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो समझता हूँ यानी ये बड़े बड़े जो आपके हैं सिंगर्स हैं ख़ास तौर पे कॉन्शियसली, और मैं समझता हूँ कॉन्शियसली भी हो सकता है, यानी देर आर चांसेस, हंड्रेड्स ऑफ चांसेस। देखें मैं इनकी गंदगी, वेस्ट की गंदगी का तो अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते, LGBTQ की अगर आप उसको सामने रखें, इतना गंदगी वहाँ पे है उसके अंदर, तो उसके बाद शयातीन से मदद लेना और ये वाले मैजिक के थ्रू और मुख्तलिफ यानी एक्शंस के थ्रू शयातीन तक एक्सेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों की, और ख़ास तौर पर पॉपुलैरिटी और आपको ये सब चीज़ें शैतान इन चीज़ों के वादे, शैतान तो आपको कहता है कि ये सब चीज़ें मुझसे ले लो, दुनिया ले लो सब कुछ और मेरे साथ लोग,
बिल्कुल।
तो शयातीन की बल्कि उलमा ने जिक्र किया शैतानों की जो है फौजों के अंदर का बहुत ज्यादा जिक्र किया, वो फौजें ही हैं
और कुछ सिंगर्स ने आपको पता है एक्नॉलेज किया है कि जब हम स्टेज पे होते हैं वी आर नॉट आवरसेल्व्स, हमारे अंदर एक सोल आ जाती है,
ऐसे ही
तो वो सोल की आवाज है ये, तो जिन्नात पोजेस। अब पोजेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग इसको डिनाई करते हैं कि नहीं इस लेवल तक नहीं होता कि जिन पोजेस कर ले, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पोजेशन हो सकती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई पोजेशन का वाकया हमें मिलता है?
अखी एक रिवायत मिलती है हमें, लेकिन वो रिवायत ठीक नहीं है। एक बात तो दुरुस्त है कि नबी सल्लल्लाहु इस बात में कोई राय नहीं है दूसरी कि शैतान आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है, इस पर तो सही हदीस मौजूद है,
बिल्कुल
इन शैतान अजरीफ इंसानी मजरद,
जैसे जमाई लेते हैं
शैतान,
ये वही वाला दाखिल
मल्टीपल है, नहीं बकायदा ये भी है और दूसरा भी है, दूसरा भी अल्लाह के रसूल ने वैसे जनरली कहा कि शैतान दाखिल होता है और आपके अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है।
सही सही।
तो इसमें तो किसी का इख्तलाफ नहीं है और बल्कि ये मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है, इस पर तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक और इजमा है कि शैतान दाखिल हो जाता है।
ठीक है।
अच्छा अब ज़रा थोड़ा सा मसला इस बात पर है कि क्या पोजेशन होती है कि नहीं, इन अदर वर्ड्स क्या शैतान यानी जो शैतान या जिन वो आपको पोजेस करके आपसे कुछ काम करवा या आपके अंदर आके कुछ बातें करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, इस बारे में दो आरा मौजूद है, दो राय मौजूद है। मेजॉरिटी का और ख़ास तौर पे जो एक्सपीरियंसेस हैं उलमा के हमारे असलाफ में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह और बड़े बड़े इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह बड़े बड़े, उनकी हमें वाकयात मिलते हैं जो उनकी किताबों के अंदर यानी मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और हम भी एक्सपीरियंस आज करते हैं, तो वो कहते हैं कि पोजेशन होती है। अलबत्ता कुछ उलमा जो हैं जो ज़रा क्योंकि गैब का मसला मैं समझता हूँ एहतियाती तौर पे वो शायद इस चीज़ को अवॉइड करते हैं ऐसा क्लेम करने से, क्योंकि इस बारे में कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस डायरेक्ट सनद से हमें कोई ऐसी चीज़ वल्लाहु आलम नहीं मिलती कि जिसके अंदर हमें पोजेशन یعنی داخل ہونے کا مطلب ہے کہ پوزیس کر کے اسے کرنا. لیکن یہ بات جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ جو ان کے اندر روح آ جاتی ہے اور ان کے منہ سے نکلتا ہے, تو شیاطین تو یہ باتیں ان کے دل میں القاء وغیرہ کرتا ہے, یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو وہ اب اس کو جس طرح مرضی ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ چیزیں اس کے خلاف نہیں ہیں. ہاں, پوزیشن کو اٹ سیلف, جس طرح وہ پوزیشن ہوتا ہے کہ انسان وہ کانپ رہا ہے جن, تو اب کیا وہ ایکچولی سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہے یا پھر وہ ہے, کچھ رائے ہے, میں کہتا ہوں کچھ علماء کی رائے ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہوتی نہیں.
نہیں لیکن دیکھیں نا آپ, ریئل میں ہم نے بھی کئی بار سنا ہے کہ ایک عورت, کمزور سی عورت, اس میں اتنی اسٹرینتھ آ گئی کہ وہ ٹیبل کو اٹھا اٹھا کے مار رہی ہیں, پھینک رہی ہیں. پھر یہ کہ ایون ایک ایسی عورت یا بچہ, اس پہ بھی میں نے واقعات سنے جن کو ایک لینگویج آتی نہیں, لیکن وہ اس لینگویج میں فر فر بات کرنے لگ جاتے ہیں. پھر یہ کہ ان کے برنز اور یہ یہاں پہ نشانات کا نظر آنا, پھر جیسے ہارر موویز میں دکھایا جاتا ہے وہ تو بہت ہی ایکسٹریم ہے, آئی تھنک وہ تو اوور ایگزیجریٹڈ ہے کہ بالکل ہی آپ کی بونز ٹوٹ جانا, ہاتھ مڑ جانا, تو یہ ساری چیزیں دکھائی
ہو سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل میں وہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو اپیسٹیمک پرسپیکٹیو سے دیکھیں, اپیسٹیمک پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ چیز, یعنی اگر آپ کسی چیز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ریلائیبل ہے, تو اس کی بنیاد کیا ہے. اصل میں جو علماء کی احتیاط ہے نا, وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم غیب کے بارے میں صرف ایکسپیرینس کو بنیاد نہ بنائیں. غیب کے بارے میں ہماری بنیاد ہونی چاہیے قرآن و سنت, یعنی وحی ہونی چاہیے. تو چونکہ وحی کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے, تو اس لیے وہ محتاط ہیں اس بارے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو کہا, ایکسپیرینسز کی بنیاد پر, وہ ایکسپیرینسز اتنے زیادہ ہیں, اور جو علماء سے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینسز, جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے بہت بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کا شاید جواب دینا مشکل ہے. اچھا, بائی دی وے, سائیکالوجسٹ اس کا جواب دیتے ہیں کچھ, جیسے آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ لینگویج ایسی بول لینی, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ انسان نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ٹی وی پروگرام کے اندر یا کچھ ایسی چیز اس نے سنی ہوتی جو اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر چلی جاتی ہے, اس کو انسان کو پتہ نہیں چلتا, تو یا ان کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے ڈیپر لیول آف, یوں انسان کی برین آپ کو پتہ ہے بہت پاورفل ہے, وہ ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے, اس کو جو ہے نا آپ کو میموری میں لانا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسی حالت میں انسان بعض اوقات لے آتا ہے. تو مطلب ان کی نمبر آف ان کی جو ہے نا ایکسپلینیشن سائیکالوجسٹ کی ملتی ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو اگین مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار اس پہ اتنی زیادہ رپورٹس ہیں, اس پہ اتنے ایکسپیرینسز ہیں کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا بالکل یہ شاید تھوڑا ایکسٹریم ہے. لیکن بہرحال وی نیڈ ٹو بی آنیسٹ, میں نے آپ کو بتا دیا کچھ علماء کی رائے ہے, اور بڑے بڑے علماء میں سے کچھ بڑے نام ہیں جو اس چیز کی احتیاط, میں سمجھتا ہوں احتیاطی پہلو کے طور پہ پریکاشنز لیتے ہوئے.
میں آپ کے سامنے اب کچھ ٹائپس آف ڈیمنز, اب ذرا میں بات کروں گا کلچرلی اور ہسٹوریکلی,
ٹھیک ہے,
کیا کانسیپٹ رہا ہے ان کا, ان بینگس کا. تو سب سے پہلے آرکنز, ان کا بہت ذکر آتا ہے, اور یہ گنوسٹیسزم, گنوسٹیسزم جو ہے کرسچینٹی کا ایک برانچ, سیکنڈ سینچری میں جب یہ گنوسٹکس رائز ہوئے تو ان کے مسٹیسزم, جیسے ہمارے یہاں صوفیزم کا ایک پورا بلیف سسٹم ہے, اس طرح یہ ان کے صوفیز آپ کہہ لیں گنوسٹکس ہیں کرسچینٹی کے, ان کے یہاں آرکنز کا کانسیپٹ ہے. اور آرکنز جو ہیں وہ ایکسٹرا ٹیرسٹریل بینگز ہیں جو آئے باہر سے, اور انہوں نے آ کے ہائبرڈس بنانا شروع کیا, اور ان کی جو شکل ہے آرکنز کی وہ ریپٹیلین شکل ہے, جیسے چھپکلی کی شکل یا مگرمچھ کی ٹائپ شکل, اور ان کی اسکن بھی ویسی ہے. تو یہ جو ہیں مشہور ہیں کرسچنز میں.
ویسے سانپ کا میں یہاں سے تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں, سانپ کا ہمیں نا, سانپ کے ریفرنسز, سنیکس کے ریفرنسز ہمیں قرآن و سنت میں کافی ملتے ہیں, شیاطین اور جنوں کے ساتھ.
میں ابھی آپ کو سنیک کا نا بتاتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے میرے سامنے, بلکہ جو ایجپشین مائتھولوجی ہے اس میں یہ سنیکس کا بہت ذکر ہے, میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. اچھا, وہی آ گیا جو آپ نے کہا, سرپنٹ گاڈس, یہ فار ایسٹ اور سینٹرل امریکہ میں زیادہ مشہور ہے سرپنٹ گاڈس. اور سرپنٹ گاڈ جو ہے یہ, اس میں میں آپ کو ایجپشین کوئی سو کالڈ گاڈز جو انہوں نے بنائے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وجت, یہ سنیک گاڈ ہے ایجپٹ کا سو کالڈ گاڈ. اسی طرح ہے رینینیوٹٹ, ایجپشین سنیک گاڈس ہے. نہب کاؤ, یعنی یہ بہت ہی عجیب و غریب سے نام ہے, یہ بھی سنیک گاڈ, سو کالڈ سنیک گاڈ. پھر میرت سیجر, ایجپشین سنیک گاڈس آف مرسی اینڈ پنشمنٹ. اب آپ دیکھیں نا, یہ سارے کریکٹر سرپنٹ گاڈ, سنیک گاڈ, تو دیکھیں سنیک کا بھی کوئی بڑا گہرا تعلق ہے اس شکل کا, ڈیفینیٹلی تبھی تو یہ فوک لورز میں اور ان کلچرز میں بہت زیادہ.
ایک تو قرآن مجید میں حدیث میں ذکر آ گیا نا, قرآن مجید میں حدیث میں ذکر ہے اس کا, جنات کا, یعنی خاص طور پہ سانپ کے بارے میں. بڑا مشہور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نوجوان جو تھا وہ اس کو ڈیتھ ہو گئی تھی باقاعدہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بہت سے اب جنات جو ہیں اب مدینہ کے اندر مسلمان ہو چکے ہیں, اور آپ نے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بالکل اتھینٹک. تو آپ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, انہوں نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے اندر سانپ دیکھے تو اس کو 3 دن کی مہلت دے کہ 3 دن کے اندر چلے جاؤ اور اللہ کی پناہ, تو ہمیں اس شر سے نکالو, اگر وہ دوبارہ نظر آئے تو اس کو قتل کر دو. تو یعنی سانپ کے بارے میں انہوں نے واقعہ سنایا باقاعدہ ابو سعید نے, کہ ہمارے ایک صحابی تھے, ایک نوجوان صحابی تھے, تو وہ غزوہ خندق کے موقع پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ گھر میں آئے, نئی نئی شادی ہوئی تھی, تو اللہ کے رسول سے اجازت لے کے گھر آ جایا کرتے تھے رات کو, اپنی بیوی کے پاس آئے تو دیکھا بیوی باہر کھڑی ہے دروازے پر.
اچھا,
تو بیوی کو پریشان ہو کے انہوں نے کہا غصے سے کہ تم باہر کیا کر رہی ہو بے پردگی کی حالت میں, بالکل انہوں نے شاید دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا, پریشان ہو کے باہر دروازے پہ کھڑی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اندر جا کے دیکھیں کیا ہے. تو اندر گئے تو کہ بیڈ کے اوپر, بستر کے اوپر وہ ایک سانپ تھا. تو انہوں نے نیزہ مارا اس کو, تو زخمی کر دیا اس کو, اور پکڑ کے باہر لے کے آئے. جب باہر لے کے آئے تو ابھی وہ مرا نہیں تھا, تو اس نے ان کو ڈسا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کر. تو سانپ جو ہے اس کے بارے میں علماء کا یہ ذکر ہے کہ گھروں کے اندر جو خاص طور پہ سانپ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو مہلت دیں, اسپیشلی جب آپ کو پتا ہو کہ وہ زہریلے نہیں. اگر تو زہریلے ہیں تو پھر تو فوراً آپ اس کو مار سکتے ہو, اس کو آپ نکالو. تو اس میں سانپ کا اچھا ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ جو ہے نا وہ جو حدیث آتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا, ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کاپی کرنے کے لیے الیاذ باللہ. اس حدیث میں مسند احمد کی روایت کے اندر ذکر ہے کہ اس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں.
اچھا,
یعنی سانپوں کا وہاں پہ بھی ذکر ہے. اور اس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ کرسچن جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر شیطان جو ہے وہ سانپ کی شکل میں آیا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, سرپنٹ کی شکل میں. تو سانپ کے ریفرنسز ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں. تو جو خاص طور پہ جو سنیک گاڈ ہے یا گوڈیسز ہیں, یہ تو ڈائریکٹ ریفرنسز ہیں. سن گاڈ جو ہے اس کے بھی ریفرنسز بہت ملتے ہیں, ہورس کے. ہارس جو ہے وہ شیطان کا نام ہے, تو ہورس اسی سے ریلیونٹ ہے. تو دا سن گاڈ, اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شیطان وہ اپنی جب پوجا کرواتا ہے تو وہ جب شیطان غروب یعنی وہ غروب ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ رہا تھا اپنے سنگوں کے درمیان. تو ان کے بڑے ریفرنسز بالکل صحیح حدیث کے اندر ملتا ہے.
تو یہ حارس نام نہیں رکھنا چاہیے, اس پہ علماء کیا کہتے ہیں؟
نہیں, حارس رکھا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول نے بعد میں اس کی اجازت بھی دے دی تھی.
اچھا,
ہاں تو لیکن ویسے ہی شیطان کا نام تھا, شیطان پہلے نام رکھا کرتا تھا, بعد میں اس کی اجازت مل گئی تھی.
اچھا, پھر ایک یہ ہے زولو قبیلہ, یہ ساؤتھ افریقن جو ہے وہ لوگ ہیں, تو ان کے ہاں مشہور ہے چٹاوری. یہ بھی آپ کہہ لیں سرپنٹ ٹائپ شکل یا ریپٹیلین کریچر جو کہ ہائبریڈ کریچرز ہیں. پھر انوناکی, انوناکی جو ہے یہ سمر کا جو علاقہ تھا, سومیرین جو لوگ تھے, بیبیلون اور عراق, یہ پرانی بہت بہت پرانی سویلائزیشن ہے. تو ان کی پوری ایک مائتھولوجی ہے کہ انکی از دا مین گاڈ ان کا, اور انکی نے انوناکیز کو بنایا. انوناکیز ایکسٹرا ٹریسٹریل بینگز تھے, وہ دنیا میں آئے, انہوں نے آ کے ہیومن بینگز کو بنایا, کچھ کے ساتھ انہوں نے فزیکل ریلیشن یعنی زنا کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہائبریڈ ٹائپ کریچر نے جنم لیا. میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد آپ کو اور آڈینس کو یہ کہ دیکھیں آلموسٹ آل آف دیز اسٹوریز آر انٹر ریلیٹڈ ان ون وے اور اندر, چاہے وہ آرکنس کی بات کر لیں, حالانکہ ڈفرینٹ کلچرز ہیں, پھر چٹاوری کی بات کر لیں, انوناکیز کی بات کر لیں, پھر سنیک برادرز, یہ ہوپی پیپل آف نارتھ امیرکا, ان کا بلیف ہے سنیک برادرز کے ساتھ کہ یہ دو بھائی ہیں اور آپس میں جو ہے نا یہ لوگوں کی وشیز پوری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, انہیں گاڈ کا درجہ دیا ہوا ہے. اسٹار پیپل, یہ نیٹو امیرکن ٹرائبس میں اسٹار پیپل کا بہت ذکر ہے, جو کہ امورٹل بینگز ہیں اور ایکسٹرٹریسٹریل بینگز ہیں, اور یہ کہ وہ ہیومنس سے بہت پاورفل ہیں, ہیومنس کی مدد کرتے ہیں. پھر کرسچینٹی میں تو پورا ڈیمنس کا کانسیپٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مین ڈیمنس کرسچینٹی میں کیا جو ہے وہ ان کا ذکر ہے. ہمارے دین میں جنس کا ذکر ہے, شیطان کا ذکر ہے, اور دیکھیں شیطان کا تو ٹائٹل اللہ رب العالمین نے چیف ڈیسیور کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ڈیسیو کرنے والا ہے. بالکل, سب سے بڑا ڈیمن آف ڈیمنز, دی آرکن آف آرکنز, ڈیمیورج کہتے ہیں, مختلف نام ہیں اس کے, لوسیفر وغیرہ وغیرہ, کنگ آف ہیل دکھاتے ہیں اس کو, تو یہ تو سب سے بڑا. اسی طرح آپ اینشینٹ ہندو ٹیکسٹ کی طرف جائیں تو بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں وغیرہ کہ میں اکثر اس پہ جب ویڈیوز دیکھتا ہوں نا اینشینٹ ہندو کیریکٹرز کے اوپر اور جو ان کے سو کالڈ گاڈز اور گاڈیسز ہیں, تو بڑی ایک اسٹرائکنگ ریزمبلنس लगती है बाकी जो पेगन कल्चर्स हैं, जैसे इजिप्शियन है, जैसे सुमेरियन है, यानी ऐसा महसूस होता है कि इन वन वे और अनदर कैरेक्टर वही है लेकिन मुख्तलिफ शक्लों के साथ, मुख्तलिफ जो है वो उसके साथ, नामों के साथ। तो एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर में जो महाभारता है और रामायणा है उसमें एक अजीबो गरीब क्रिएचर जिसका नाम जो है वो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, निवाता कवचस। ये क्रिएचर जो है ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस से है और ये 30 मिलियन है दुनिया में अकॉर्डिंग टू देयर स्क्रिप्चर्स। और अब ये वीक हो गए हैं या छुप गए हैं या इनको मार दिया गया है, इस पर एक बहस है उनके यहाँ, हिंदूज के यहाँ। 30 मिलियन थे ये शुरू में और ये समंदरों के नीचे रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात, दे आर रिजाइडिंग अंडर द ओशंस।
अच्छा, बकायदा हमारे कुछ उलमा की राय ये है कि जो जो इंसान है ना वो जिन्नों से ज़्यादा है, जिन कम है इंसान से। बाय द वे,
अच्छा,
यानी इनकी पॉपुलेशन कम है मर्दों के, और इनकी पॉपुलेशन इंसानों की बढ़ गई है और जिन्नों की कम है।
आप देखें कि ये जो है अपना अलबिदाया वन आया, उसमें मैंने खुद रवायत पढ़ी है कि जब ये बैटल हुई थी, द ग्रेट बैटल बिटवीन जिन्स एंड एंजल्स, तो कुछ जिन्नात को मार दिया गया था और कुछ को समंदरी जजीरों में आइलैंड्स के ऊपर भगा दिया गया या लॉक कर दिया गया। फिर वो सही मुस्लिम की भी हदीस है, मैंने पहले भी आपसे जिक्र की थी कि एक सहाबी का कॉल है, गालिबन अब्दुल्ला बिन उमर है, मेरे जहन से अभी निकल गया। तो सहाबी ने कहा कि क्यामत के करीब वो जिन्नात जो समंदरों में कैद किए थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वो निकल आएंगे और वो कुरान पढ़ेंगे। यानी अब उनका कुरान क्या है वल्लाहु आलम, लेकिन ये कि वो कुरान की तरह दे विल रिसाइट समथिंग। तो इंटरेस्टिंगली आप देखें कि इन क्रिएचर्स का जिक्र भी समंदर के नीचे का है, तो एक स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस हमें मिल रही है इन क्रिएचर्स के बारे में। फिर एक सो कॉल्ड गॉड जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलता है वो धन्वंतरी, और धन्वंतरी एक बहुत ही अजीबोगरीब मिस्टीरियस सा क्रिएचर है जिसके पास मेडिसिन का बहुत नॉलेज है, जिसके पास मैजिक का जो है वो बहुत नॉलेज है। और कई जो हिंदू सर्जन्स थे उस दौर के, बहुत एंशियंट, उन्होंने इससे जो है वो मेडिसिन का नॉलेज लिया, ये उनके उसमें आता है किताबों में। और दिस कैरेक्टर कैन ऑल्सो टेक फॉर्म ऑफ अ बर्ड, ये एक बर्ड के फॉर्म में भी आ जाता है सामने, पर हो इसके बड़ी सी एक बर्ड। इंटरेस्टिंगली यही सेम कैरेक्टर एक और नाम से एंशियंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी है, थॉस के नाम से। और थॉस जो है वो एक बहुत पावरफुल बीइंग उन्होंने दिखाया हुआ है। एक्चुअली थॉस इज अ गॉड ऑफ साइंस मेडिसिन एंड मैजिक इन इजिप्शियन माइथोलॉजी, सो कॉल्ड गॉड। और थॉस जो है उसकी टैबलेट्स भी, अब पता नहीं उनमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन टैबलेट्स ऑफ थॉस ये मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि उन्होंने दरियाफ्त की बहुत पुरानी टैबलेट्स, उसमें थॉस की कुछ राइटिंग्स हैं या थॉस ने कुछ बातें की हैं वो दर्ज हैं, जिसमें वो डिफरेंट क्रिएचर्स का जिक्र कर रहा है, वो क्रिएचर ऑफ फायर, क्रिएचर ऑफ सैंड एंड क्रिएचर ऑफ लाइट, इन तीन का जिक्र कर रहे हैं, एंजल्स, ह्यूमन बींग्स और जिन्स का। फिर वो उसमें जिक्र कर रहा है अकॉर्डिंग टू दोज टैबलेट्स, अब वो पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है वल्लाहु आलम, उसमें जिक्र हो रहा है कि मैं परवाज़ की आसमानों की तरफ गया तो वहाँ पे मुझे गार्डियंस मिले, तो वो वहाँ पे पहरा दे रहे थे। तो देखें ना कितनी सिमिलर इन्फॉर्मेशन है कि शयातीन जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एंजल्स पहरा दे रहे हैं। डेफिनेटली अल्लाह ने दरवाजे, हर आसमान के दरवाजे हैं और एंजल्स पहरा दे रहे हैं।
इसमें बुनियादी बात जो ये है ना वो ये है कि देखें किसी इस्लाम का इसके बारे में कोई दूसरी, इस्लाम को इस बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई मसला नहीं है इससे। उसकी वजह यह है कि हमारा अपना बिलीफ ये है कि ये जो शैतान है ये इन्फ्लुएंस, ये अक्रॉस कल्चर्स इन्फ्लुएंस करता है।
सही।
तो जिस तरीके से हमें मुख्तलिफ ट्रेडिशंस के अंदर तौहीद के रेफरेंसेस मिल जाते हैं, उनके असरात और निशानात मिल जाते हैं, कुछ ऐसे फिगर्स मिल जाते हैं जिसके अंदर, जिनके बारे में ये गुमान किया जा सकता है कि वो नबी थे अल्लाह ताला के, उनकी भी राइटिंग से ऐसे, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, बहुत सी हिंदू की किताबों से, मुख्तलिफ ऐसी अजीबोगरीब रिलीजन उनकी किताबों से बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें बयान कर देते हैं। बल्कि मुझे याद है एक ज़माने मैंने किताब पढ़ी थी, ये उस बंदे का नाम क्या है, द सोर्सेज ऑफ द कुरान के नाम से उस बंदे का, एक मुस्तशरी ओरिएंटलिस्ट है बहुत पुराना, विलियम क्लेयर टिस्टॉल उसका नाम है। تو اس کی کتاب ہے, اس نے بیسکلی قرآن مجید پر اعتراضات اٹھائے. اس نے کہا کہ قرآن مجید بیسکلی یہ جو اس نے جو سارے واقعات لیے ہیں یہ مختلف ٹریڈیشن سے لیے ہیں, اور اس نے ایکیوز یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کیا کرتے تھے, جاتے تھے تو وہاں پہ آپ کو مختلف علاقوں کے لوگ ملتے تھے, دمشق شام وغیرہ میں, تو وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوتی تھی, وہاں سے آپ کہانیاں سن کے لیا زب اللہ گڑھ لیا کرتی تھی, اور اس کا ایک کلیم ہے. تو اس نے جو ہے اس نے بیسکلی ایسے کئی واقعات, میں نے جب وہ کتاب پوری پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ میں نے جو کتاب پڑھی تو اس کے اندر اس نے عجیب و غریب کچھ ایسے واقعات ذکر کیے جو بے آئینی لگتا تھا جیسے قرآن مجید کا ذکر ہے, اور وہ مختلف پتہ نہیں ایسے ایسے ٹریڈیشن سے اور ایسے ایسی ہندوز کے ایسے ایسے اسکولز آف یعنی ان کے مختلف اسکولز آف تھاٹ اور ان کے سب کلچرز یا کلچرز کچھ ایسے تھے جس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں, اور جس کے اندر کچھ چیزیں ہمیں بڑی کامن نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ دا گریٹ فلڈ ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا, جو ہمارا ایمان ہے جس پر کہ وہ آیا, اس کا آپ کو مختلف ٹریڈیشنس کے اندر ذکر ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو غالباً سومیرین ٹیکس کے اندر بھی اس کا بھی ذکر ملتا ہے, اس طریقے سے ہر آلموسٹ ریلیجیس ٹیکس کے اندر آلموسٹ دا گریٹ فلڈ کا ایک پانی کے آنے کا ذکر ملتا ہے, یعنی کہ ایک طوفان کا ذکر ملتا ہے. اس طریقے سے مختلف اور بھی چیزیں ہیں جس کا ذکر ملتا ہے. تو بیسکلی کہنے کا مطلب یہ کہ اگین اس یہ ہمارے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر بھیجے مختلف ٹریڈیشنز مختلف ریلیجنس کے ساتھ مختلف لوگوں کی طرف جنہوں نے بعد میں اس کو مختلف ریلیجن بنا دیا کیونکہ وہ محفوظ نہیں رہے. اسی طریقے سے شیاطین کا بھی یہ معاملہ ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ, کیونکہ ہر دور کے اندر شیاطین ایگزسٹ کرتے تھے, پھر طاغوتی طاقتیں ذکر کرتی تھیں, اور ایگزیکٹلی وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جا کے ان کی بنیاد ایک ہی ملتی ہے. میجک آپ کو ہر جگہ کامن نظر آتا ہے, بت پرستی آپ کو ہر جگہ کامن نظر آتی ہے, غیر اللہ سے اور یہ اس طرح کی عجیب و غریب جو ڈیمنز ہیں, سیکریفائسز جو ہیں, سیکریفائسز ریچولز خاص قسم کے, یہ بھینڈے چڑھانا, یہ بہت کامن کلچرس کے اندر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں, اور مختلف انٹیٹیز کو گاڈ بنا لینا, مختلف خاص طور پہ ایسی انٹیٹیز کو جو نقصان دے ہوں, جو بڑی یا طاقتور ہوں, سانپ ہو گیا, شیر ہو گیا.
تو یہ کامنالٹیز, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 1945 میں ایک فارمر تھا, اس کو ایجپٹ میں 13 لیدر باؤنڈ پیپرس بکس ملی, دفنائی ہوئی تھی کسی نے سیورن ارتھن ویئر جارز کے اندر, وچ ور ریٹن بائی اگنوسٹکس, جو کرسچنز کے ایک وہ پورا فرقہ ہے, اور اس میں انفارمیشن لکھی تھی اگنوسٹکس نے کہ ہاؤ ہیومن ریس واز ماڈیفائڈ بائی اے ریس آف ایکسٹرا ٹیرسٹریل کریچرز کالڈ آرکنز, یہ اس میں درج ہے. اب ایک پاسبلٹی ہے, ہو سکتا ہے, دیکھیں میرا تو یہ بلیف ہے میرا کہ کئی چیزیں کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں, صرف ہیومن بینگس کو ڈرانے کے لیے, فیسینیٹ کرنے کے لیے, یا ہیومن بینگس کو ایک آپ کہہ لیں ان کا عقیدہ ایمان ویک کرنے میں, اور شیاطین کیوں نہیں نریٹ کر سکتے ان کہانیوں کو, اور وہ کہانیاں ہو سکتا ہے کوئی پریسٹ لکھ دے انفلوئنس ہو کے, پوزیس ہو کے. دوسرا, ریئل میں بھی یہ کریچرز آ سکتے ہیں اس دور میں مختلف شکلوں میں, ان کو آرکنز کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں. تو بہرحال یہ جو کریچرز ہیں ایکسٹرا ٹیرسٹریل بینگ, دے ور سرپنٹ لائک کریچرز, اگین دیکھو وہی سرپنٹ سنیک, وہی شکلیں, لیزرڈ شیپ, ریپٹیلین ریس, اور اینشنٹ انڈین کلچر میں انہیں ناگرز کہا جاتا ہے انہی چیزوں کو. پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل کی طرف اگر آئیں, ابھی میں آپ کے سامنے وہ ان کے ڈیمنز جو ہیں ان کی ٹائپس رکھتا ہوں. بائبل میں آپ دیکھیں تو نیفلم ایک کریچر کا ذکر ہے, جو بیسیکلی اس کے بارے میں مشہور یہ کہ حضرت نوح کے دور میں یا ان سے پہلے جو فالن اینجلز تھے, وہ فالن اینجلز کیونکہ ان کے ہاں ڈیمنز کو کا کنسیپٹ فالن اینجلز کا ہے, تو وی آر ویری کلیئر کہ اینجلز جو ہیں وہ الگ بینگز ہیں, جنز الگ بینگ اور ڈیمنز الگ بینگ. تو فالن اینجلز نے آ کے اس دنیا میں ہیومن ریس کے ساتھ انٹرکورس کیا, اور اس کے نتیجے میں جو پیدائش ہوئی جس کی کریچر کی, وہ نیفلم ہے, جائنٹس بھی کہتے ہیں انہیں. تو ان نیفلم نے بہت زیادہ دنیا میں ایک تباہی مچائی اور بہت زیادہ انہوں نے فساد مچایا, تو طوفان نو بیسیکلی ان کو بھی تباہ کرنے میں آیا تھا, ریبیلیس انسانوں کو بھی اور ان کریچرز کو بھی. اور یہ سٹوری یقین کریں آپ کو گریک میتھولوجی میں ملے گی, دا سٹی آف اٹلانٹس جس کو ڈبو دیا گیا اور وہ سمندر کے نیچے. آپ کو ہندو اسکرپچرز میں یہ طوفان نو سے ملتا جلتا واقعہ ملے گا کہ پوری دنیا کو ایک بار پانی کے نیچے جو ہے وہ ڈبو دیا گیا. تو یہ بائبل, اور پھر میں اگر بائبل کی بات کروں, کرسچن میتھولوجی کی بات کروں, تو اس میں جو ڈیمنز ہیں, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کرسچن اسکالرز جو ابلیس ہے لوسیفر, اس کے 5 جنرلز ہیں جو اس وقت دنیا میں رول کر رہے ہیں. وہ 5 جنرل جو ہیں, بال کا ذکر قرآن میں بھی, بال اور بال جو ہے یہ his main purpose is to, you know, invite humanity to a culture of impurity. ये impurity का God है, so called God.
أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين.
जी, बिल्कुल कुरान की आयत है. फिर Asmodeus है. Asmodeus prince of demons है. ये lust का, desire का, seduction का demon है. फिर Leviathan. Leviathan जो है sin of sin और envy, इन चीजों का demon है. यानी ये इस तरफ बुलाता है. Lilith. Lilith जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं Lilith के बारे में थोड़ी अभी रिसर्च की, Lilith का जो कैरेक्टर है, अब देखें, दिस स्टोरी टू मी इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम इब्लीस, वल्लाहु आलम. Lilith जो है, शी वॉज द पार्टनर ऑफ आदम अलैहिस्सलाम अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी. एडम और ईव, ईव से पहले Lilith जो है ये वाइफ थी आदम अलैहिस्सलाम की, और शी टर्न्ड रेबेलियस, शी कुडंट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, एंड शी टर्न्ड बेसिकली अ रेडिकल फेमिनिस्ट. मतलब जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो लिटरली मुझे ये लगा कि यार ये तो वही सारी स्टोरी है. और उन्होंने पेट्रियार्की जो थी उसको डिनाई किया ये Lilith ने, और उसके बाद शी टर्न्ड इनटू अ डीमन लाइक क्रिएचर इन रिवेंज. और Lilith इज नाउ वन ऑफ द जनरल्स ऑफ लूसीफर. मतलब मैं क्रिश्चियन मैथोलॉजी की आपको बात अभी बता रहा हूँ. And she preys on men and newborn babies. और lastly, जो fifth general कहते हैं वो जी के, जो इस वक्त इब्लीस का बड़ा top general है, Baphomet, which is the so-called god of witchcraft and sorcery. तो ये पांच demons उनकी mythology में बड़े strong demons जो है वो show किए जाते हैं. तो crux ये है, देखें, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद ऑडियंस के साथ, कि सुभानअल्लाह, इस्लाम से पहले पता नहीं किस किस तरह जिन्नात और शयातीन इन वन शेप और अदर लोगों को करप्ट करते रहे हैं. रिलीजन्स में, फॉल्स रिलीजन्स में कितना उनका इन्फ्लुएंस है, स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट करने में उनका कितना इन्फ्लुएंस है. पता नहीं, लोगों को स्टोरीज नरेट करते होंगे, लोग बिलीव कर लेते होंगे. और हज़रत सुलेमान के दौर तक तो देखे ना, इट्स वेरी क्लियर कि जिन्नात का देखा जाना या उनसे इंट्रैक्शन बड़ी कॉमन थी. ये तो उसके बाद हमें थोड़ा सा लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई. आप देख लें हज़रत मूसा के दौर में, इवन जो सामरी था उसके बारे में भी आता है ना कि वो भी कुछ इसी तरह का कैरेक्टर था, कोई जादूगर टाइप जो है वो कैरेक्टर था. और ये नज़र आ रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री क्लियरली कि शिर्क से इन्हें पावर मिलती है. सबसे ज़्यादा जो इन्हें पावर मिलती है वो शिर्क से मिलती है. और आपने सुभान अल्लाह इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई कि इबलीस के इर्द गिर्द सांप होते हैं. मतलब सही हदीस से आपने कहा, साबित है. तो कोई बईद नहीं कि वो अपने सोल्जर्स को, स्पेशली जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स हैं, उनको मुख्तलिफ शक्लों में भेजे, लोगों के सामने आए, वो लोग इम्प्रेस हों और फिर उनके फोकलोर्स बन जाएं, उनकी कहानियां बन जाएं, फिर एक वक्त गुजरे तो वो गॉड्स बन जाएं, सो कॉल्ड गॉड्स वर्शिप होने लगे उनकी. तो ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इक्वेशन सॉल्व हो जाती है अगर हम थोड़ा तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें. सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें सारी बातें पहले ही बता दी.
अच्छा, जैसे मैं एक चीज़ वजाहत करूँगा, जैसे आपने बहुत सी ज़ाहिर ट्रेडिशंस का हवाला दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये क्लियर करना भी ज़रूरी है कि ये ट्रेडिशंस बताने का मकसद ये नहीं कि हम ये बता रहे हैं कि ये सही है, ये इसलिए हम इसको सही समझते हैं तो बयान कर रहे हैं. बेसिकली ये ट्रेडिशंस जो आपने वाकयात बयान किए, और ये कि जी Lilith वगैरह के बारे में और ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि देर आर यानी शयातीन के बारे में हमें मुख्तलिफ ट्रेडिशन से बहुत सी चीज़ें मिलते हैं, और उनमें कुछ चीज़ें कॉमनैलिटीज़ हैं, उनमें कुछ कॉमनैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. और ज़ाहिर है अगर वो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में मौजूद हैं तो हमारा उसके बारे में वही राय होनी चाहिए, क्योंकि हमें कुरान सुन्नत ने बताया कि ला नुसद्दिकु हुम वला नुकद्दिबु हुम, ना हम उनकी तस्दीक करते हैं ना तकज़ीब करते हैं. हाँ, हम जिक्र कर सकते हैं उनको कि यार ये पॉसिबिलिटी होगी, वल्लाहु आलम, हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो एज़ लॉन्ग एज़ वो कुरान सुन्नत के सही मुखालिफ ना हो. दूसरी चीज़ जो आपने ये जिक्र की कि हमारा जो मकसद बुनियादी ये था कि बताने का कि दीज आर यानी ये किसी न किसी शक्ल में हमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, ख़ासतौर पे डिमोनिक और ईवल एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं. और ज़ाहिर है जो शयातीन की हमें डिस्क्रिप्शन हमें कुरान और सुन्नत में मिलती है वो ऐसी ईवल है, वो इस तरह की काम करना और इस तरह की चीज़ें उनके यहाँ पाई जाना कोई अनहोनी बात नहीं, ये हो सकते हैं, यानी इसमें इम्कान मौजूद है. हाँ, ये हम क्या ये है कि नहीं, वल्लाहु आलम, हम इसके बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इम्कानात मौजूद हैं कि ये चीज़ें उन्हीं के साथ एसोसिएटेड हों.
देखिए, शुरू में मैंने भी ये डिस्क्लेमर दिया है कि ये बातें करने का मकसद सिर्फ हमें हम एक दूसरे को वार्न कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को भी,
इस तरह हो सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी,
हो सकता है,
यू नीड टू बी कॉशियस.
और जो आपने बात की ना कि देखें, वी नीड नॉट गेट इम्प्रेस्ड. अगर कोई इस तरह की हरकतें करता नजर आए, हवा में उड़ता नजर आए, या वो क्लेम करे कि मेरे पास फलानी पावर है या मुझे नॉलेज आ रहा है, तो इसमें कोई इम्प्रेस होने वाली बात नहीं. ये तो थ्रू आउट हिस्ट्री मैजिशियंस, सूथसेयर्स, अकल्टिस्ट करते आए. दूसरा देखें, मेरा ये सारे टाइप्स बताने का मकसद ये था कि इब्लीस वाकई चीफ डिसीवर है. जैसे अल्लाह ने कहा ही इज द चीफ डिसीवर,
यानी इस पूरे इन वाकयात की बुनियाद ये है कि एक धोखे वाली एक कोई ताकत पीछे
जी
बुराई कोई काम कर रही है. ताकत नहीं, जैसे कोई बुराई पीछे इसके पीछे काम कर रही है.
एग्जैक्टली, ये असल में मकसद है. तो आखिरी हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व फ्रॉम दीज शयातीन. अच्छे जिन भी होते हैं, लेकिन अच्छे जिन के साथ मैं समझता हूँ कि इंट्रैक्शन वो पसंद नहीं फरमाई गई. हाँ, ये इस तरह के वाकयात सुने हैं कि एक फलाने स्कॉलर का कोई शागिर्द है जिन वो इज्जत करता है, लेकिन ये कि उससे काम लेना जायज नहीं है. एम आई राइट? इंट्रैक्शन तो जायज नहीं है, वरना साहबा ले
इंट्रैक्शन की जा सकती है, हेल्प ली जा सकती है, लेकिन इसका दावा नहीं करना चाहिए. असल में उलमा इस बारे में मोहतात हैं कि जो लोग दावा, असल में देखें बात यह है कि आपको अगर कोई जिन आपके साथ मौजूद है, वो आपकी कोई अच्छा काम कर सकता है, तो जिस तरीके से आप उसकी ताकत के अंदर कोई चीज़ है तो उसमें कोई मसला नहीं है. लेकिन असल में मसला ये आता है जब लोग इसको बुनियाद बनाते हैं अपनी वैलिडिटी, प्रूफ ऑफ अपनी जो है ना कि अपनी इंटेग्रिटी की एक दलील बनाते हैं कि जी मैं, या फिर अपनी एक ऑनर की, अपने एक किरदार की दलील बनाते हैं कि जी मेरे तो जिन्नात हैं, मैं तो उनसे काम लेता हूँ, वो बड़े बड़े आदमी थे, उनके ये कोई दलील नहीं होती. इसके बारे में दावा करने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस. पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसिस को कभी भी आप यानी दूसरों के सामने पेश करके अपनी एक वैलिडिटी का प्रूफ नहीं बना सकते. बाकी बेनिफिट आप उठा, अगर तो आपकी बेनिफिट करते हैं, लेकिन वैसे उलमा ये कहते हैं, हमारे साझा कहा करते थे, इनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं, इनकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं. ये मतलब झूठ बहुत बोलते हैं, धोखेबाज बहुत होते हैं, जैसे
नेचर में शरारत,
नेचर में शरारत पाई जाती है. तो और बड़े जो हमें कुछ वाकयात मिलते हैं उसमें भी ये था कि हमारे उलमा पसंद नहीं किया करते थे इनसे कोई काम लेने में, वो इनको ज़्यादा घास भी नहीं डालते थे, अहमियत भी नहीं देते थे कि यार, क्योंकि ये गैब के साथ इनका ताल्लुक है, पता नहीं हकीकत में कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या इनके पीछे नज़रिया होते हैं, अजाइम होते हैं, वल्लाहु आलम. तो एक चीज़ जैसे मैं अली भाई आपसे जिक्र करूंगा, एक चीज़ खास तौर पे, वो ये है कि एक वाकया जो है इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह ने जिक्र किया है तलबीस इब्लीस में, एक जिन का वाकया जिक्र किया है. एक बंदा था, तो उसने क्या किया कि एक जगह पे कुछ लोगों ने क्या किया, एक बुत बनाया, उसको पूजना शुरू कर दिया. तो एक जिन, एक बंदा, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, मुसलमान था, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, ये देखो इन्होंने शिर्क शुरू कर दिया. तो एक दफ़ा बड़ा अज़म करके निकला गुस्से से कि मैं आज उस बुत को तोड़ दूंगा और उसको तोड़ूंगा ताकि लोग जो है ना अल्लाह के, यानी शिर्क से, अल्लाह के साथ शिर्क करने से महफूज हो सकें. तो वो निकलता है तो रस्ते के अंदर उसको एक इब्लीस मिलता है, एक बंदे की सूरत में, बूढ़े आदमी की शक्ल में. वो कहते हैं किधर जा रहे हो? वो कहता है जी मैं फलां फलां बुत को तोड़ने जा रहा हूँ, देखो उसने गुमराह. उसने कहा कि तुम्हें क्या फ़ायदा, तुम वो तुम थोड़ी कर रहे हो, वो कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तो उसने कहा नहीं नहीं मैं फिर भी तोड़ूंगा. तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, उसको कन्विंस करना शुरू कर दिया. वो ना माना तो आखिरकार उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ फ़ायदा दूँ इसके बदले तो तुम फिर छोड़ दोगे? उसने कहा क्या फ़ायदा? उसने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हें घर को अगले दिन जो रात को सो, सुबह उठोगे तुम्हारे तकिए के नीचे से तुम्हें 2 दिनार यानी दो गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, रोज़ाना मिला करेंगे, तुम चले जाओ. तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ जाके. वो चला गया और जाके सो गया. तो उसने अपना तकिया को अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहले अपने तकिए के नीचे देखा तो बाकी 2 गोल्ड कॉइन्स मौजूद थे.
अच्छा,
तो बड़ा खुश हुआ. उसने कहा चलो यार ये अच्छी बात है. फिर अगले दिन भी दोबारा रात को सोया, उसने कहा कि सुबह मिल जाएंगे 2 कॉइन्स, लेकिन सुबह उठा तो कुछ भी नहीं था. तो वो गुस्से से गया, उसने दोबारा अपनी तलवार शलवार पकड़ी है कि मैं जाके अब उसको दोबारा तोड़ता हूँ. तो उस वक्त फिर उसको वही बंदा बूढ़ा मिला रस्ते में. तो उसने कहा किधर जा रहे? उसने कहा मैं जो तोड़ने जा रहा हूँ. तो उसने कहा कि उसको पकड़ लिया, उसको गिराया बकायदा और उसका गला दुबाना शुरू कर दिया
बूढ़े
आदमी ने. और उसने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शैतान हूँ, मैं इब्लीस हूँ. तो पहले जो तुमने जब तुम गए थे ना उस टाइम तुम्हें गुस्सा अल्लाह के लिए आया था, यानी तुम्हारे अंदर इस ईमानी कुव्वत थी जिसकी वजह से तुम निकले थे. उस वक्त मेरा तुम्हारे ऊपर कोई बस नहीं चल सका था, लेकिन अब जो थी ना, अब तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है. अब तो तुम सिर्फ माल के लिए यहाँ पे जा रहे हो कि तुम्हें माल नहीं मिला तो तुम गुस्से में जा रहे हो. तो उसने उसको पकड़ लिया. तो इससे इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ने इस वाक़े को जिक्र किया. अगरचे ये सही है कि नहीं, वल्लाहु आलम, इसकी हकीकत नहीं हमें पता, लेकिन इससे एक बात पता चलती है, इन इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान वकफा बिरब्बिका वकीला. जैसे आपने आयत पढ़ी थी ना कि मैं अपनी ज़ुबान से अपने घोड़ों के, उससे अगली आयत किया है, अल्लाह ने कहा था जो तू मर्जी कर ले मेरे बंदों के ऊपर, एज़ लॉन्ग अगर एक बंदा ईमान पर है और अगर उसके साथ कुरान और सुन्नत उसके साथ मौजूद है, उसको डरना नहीं चाहिए. असल में इंसान जब डरता है ना तो शैतान हावी होते हैं. इंसान मजबूत हो, उनसे कहें मुझे परवाह नहीं है, अल्लाह के लिए खातिर, अल्लाह की खातिर मैं ये, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते. ये इतने वीक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते. बहुत रिस्क होता है इनको कुछ करना, खास तौर पे इनके लिए. तो मैं ये कहूँगा कि सबसे आसान तरीका ये है, दीन को पकड़ लो, अपने आप को पाक साफ रखो, शरीयत पर अमल करना शुरू कर दो.
डर रखना बहुत जरूरी है.
क्योंकि गंदगी के ऊपर आते हैं। हाँ। तो और सबसे बड़ी बात यह कि तवक्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये तजुर्बा देखा और ये राकीस, मैं बड़े जो मोतबर राकीस हैं हमारे असातज़ा में से, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं शयातीन और जिन्नात उन पर हमला करते हैं जिनके आसाब वीक होते हैं, जिनके नर्व्स वीक होते हैं।
अच्छा।
जो स्ट्रांग नर्व्स वाले होते हैं ना शैतान, इतने आराम से यानी जो डर जाते हैं फौरन। तो आप डरे ना, आप कहें जी मेरे पास कुरान और सुन्नत है, आयतुल कुर्सी है, मैं मुझे कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते आप, ये डरा भी नहीं सकते आपको।
सही।
इतने ये डरपोक हो जाते हैं।
देखे ना वो हदीस आपने सुनाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के
दरवाजा बंद, दरवाजे से गुजर
नहीं सकता, खोल सकता,
कुछ भी नहीं कर सकता,
सबसे जो पावर
घर में दाखिल नहीं हो सकता।
फिर रात सोने से पहले 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के झाड़ो बिस्तर को, फिर
जूता पहनते वक्त एक दफा अच्छी तरह उसको झाड़ लो।
हाँ बिल्कुल। फिर देखे तीनों कुल है कितने पावरफुल। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 बार सुबह शाम पढ़ने का हुक्म दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, के शैतान करीब भी नहीं आ सकता उस इंसान के जो 100 बार सुबह और शाम जो है वो ये पढ़ लेता है। फिर देखें वुजू में रहना, तो बच्चे बड़ा डरते हैं ना हमारे, आपको पता है कि छोटे बच्चे हॉरर मूवीज़ के बड़े शौकीन होते हैं और ज़ाहिर है कि इन स्टोरीज़ के, तो उसके बाद वो डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो देखें मैं तो ये समझता हूँ मुईरा कि वो जो हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी को जब ठोकर लगी, उन्होंने कहा शैतान ने लगवा दिया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इससे तो उसको बूस्ट मिलेगा, तो मैं तो बिस्मिल्लाह कहना चाहिए ताकि कि वो मक्खी की तरह सुकड़ के छोटा सा हो जाएगा। तो ये जो मूवीज हैं ये इतना एग्जैजरेट करके उनकी पावर को दिखाती
है। और मैं इसीलिए सही नहीं समझता है मूवीज देखना, ये जो है ना असल में ये डराती भी हैं।
हाँ।
और ये मैं बताऊं इससे लोगों के नर्व्स वीक होते हैं, वही बात है इंसान के दिल में डर बैठना शुरू होता है और शयातीन फायदा उठाते हैं इसका,
फायदा उठाते हैं इसका। और हैलोवीन भी अगर आप देख लें तो वो भी इनको कमेमोरेट करना है ना,
एग्जैक्टली
वेनरेट करना, कमेमोरेट करना, सेलिब्रेट करना इनकी पावर को, लोगों को डराना। तो मतलब हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों को ये चीजें बहुत तंग करती हैं, क्योंकि वो मासूम होते हैं, वो बताते हैं तो पेरेंट्स बिलीव भी नहीं करते, वो कहते हैं कि यार ऐसी स्टोरियां सुना रहे, तो हो सकता है उसको छोटे बच्चे को बहुत तंग कर रही हो ये चीजें। तो अल्लाह ताला हमें बचाए। जबरदस्त लगा बहुत, इंशाल्लाह करते रहेंगे हम ये पॉडकास्ट। और वंस अगेन डिस्क्लेमर यही देना चाहूंगा कि मकसद यही था कि लोगों को आगाही भी मिल जाए इस चीज़ की, और लोग जो है वो मेंटली भी स्ट्रांग हो और फ़ख्र करें अपने दीन पे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें शिर्क से भी बचाया, तौहीद दी, और अल्लाह सुभान व तआला ने हमें वो तरीके दिए कि हम अपनी हिफाजत भी कर सकें। जज़ाकअल्लाह खैर जी, इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।